घर की हालात ऐसे हो गए कि अब खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। मेरी माताजी बीमार हो गई, मैं कमा नहीं रहा हूँ। मेरी बेटी का खर्चा और मेरी वाइफ का खर्चा पिताजी उठा रहे हैं। क्या मैं अपना खर्चा नहीं उठा सकता? कोई यदि काम दे देंगे रिक्शा का, मेरे पास तो लगभग जो है ना कोई 7-8 रुपये रह गए हैं। मैं खाना भी नहीं खा सकता दोपहर का, यहाँ मैं मर जाता, मुझे क्या पता मेरी लाश मुझे घर वालों को मिलती ना मिलती। यही था कि भाई मैं घबराता नहीं, जो भी होगा मैं देखूँगा। और 4 बहनों ने 20 किलो आंवला रगड़ा सुबह से शाम तक, उनके हाथ भी छिल गए। क्यों ना इसकी कैसी मैं मशीन बना दूँ जो उनके हाथ ना छिले और ये आंवला भी कद्दूकस हो जाए। लोगों का मानना ये है कि अक्सर एक रिक्शा चलाने वाला, एक अखबार बांटने वाला या चाय बनाने वाला ये कभी बड़ा नहीं बनेगा, इसकी तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी, ये लोगों की धारणा है। ये बात नहीं है, एकदम इससे अलग बात भी है कि गांव का ग्रामीण किसान, एक वो मैट्रिक पढ़ा हुआ, आज देश के राष्ट्रपति का मेहमान रहता है, राष्ट्रपति भवन में उसको सम्मानित किया जाता है, 20 दिन उसको गेस्ट बनाया जाता है, बड़ी बड़ी फिल्म वाले वर्ल्ड फेमस जेम्स कैमरन टाइटैनिक वाले लोग उसको मिलने आते हैं। आज करोड़ों में कारोबार और दुनिया में विदेशों में अपनी मशीनें बेच कर अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। वो आज जोश टॉक के माध्यम से मुझे आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिला और मैं आज आपको बताऊंगा अपनी कहानी। तो मेरा नाम धर्मवीर, गांव दामला, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हूं मैं। मेरे पिताजी आटा चक्की का काम करते और हम 5 भाई बहनें, जिनमें मेरी बड़ी बहन, फिर उससे छोटे दूसरे नंबर पे मैं, और फिर उसके बाद में मेरी छोटी बहन, और फिर छोटा भाई और एक छोटी बहन। गाँव में क्या होता है, मैं अब बड़ा होने लगा बच्चों के साथ में, और बच्चों के साथ में खेल खेल में मैं बच्चों के साथ शरारत करता था। उनके बंटे जो थे खेलने वाले, उनको मैं चोरी कर लेता था। तो कुछ झगड़ता मैं उसको दबा देता, ऐसे डरा देता, धमका देता। घर वालों ने देखा कि बच्चे ने ज़्यादा परेशान कर रखा माता जी ने, और मुझे फिर स्कूल में दाखिल करा दिया जब मैं 6 साल का हो गया। मैं स्कूल में से अब प्राइमरी क्रॉस कर गया, 5 से 6 में चला गया। अब 6 में जाके फिर वही मेरी अंग्रेजी का रुक गया, और मैं स्कूल में फिर मैं जाना कम कर दिया। और 4-5 लड़के आपस में, जहाँ गौ चिरांद हमारे गांव का, वहाँ पर गाय इकट्ठी होती है, वहाँ चले जाना और वहाँ लड़े के ऊपर से खेलना दौड़ना, वो बड़े जोहड़ में उसमें जिसमें पशु नहाते थे उसमें तालाब में तैरना, स्कूल से फरार रहते, ऐसे ही वहाँ जंगल है पास में, उसमें गायों के बीच में रहना और उनका दूध निकाल लेना एक बर्तन में मिट्टी के, और उसको गर्म करना खेतों के बीच में। तो वहाँ किसान लोग होते तो वो धुआं निकलता देखते कि भाई ये तो, वो हमारा एकदम पता लग गया है कि ये गाय का दूध चोरी करते हैं स्कूल के बच्चे, और यहाँ आकर के मिठाइयाँ बनाते हैं और खाते हैं। तो फिर हमने क्या सोचा, यार ये धुआं निकलता है खेत में, हम खेत के बीच में ही जाके काम करते थे सारा, बाजरे के खेत में बैठ करके, स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं। तो चूल्हा बनाया हमने जो जिसमें धुआं ना निकले, और ये जब चूल्हा बनाया तो हम इस पर फिर लगे पकाने उसमें दूध, और वो तो हमारे तो मज़े आ गए, उसमें धुआं भी ना निकले और वो पता भी ना लगे किसी को। तो इस तरह एक चूल्हा मेरा पहला ये आविष्कार था। मुझे ये बातें हम जरूर कर रहे थे कि आओ चलो आविष्कार करें आओ, तो ऐसे करके हम बच्चे आपस में फिर ये हमने चूल्हा बनाया, इसे काम किया। इसके साथ ही मैं फेल भी हो गया 6 में, फिर दोबारा फिर मैं स्कूल में एडमिशन लिया और मैं फिर पढ़ने लगा, और मैं पिताजी के साथ में आटा चक्की पर काम करता, और वहाँ पर शहर में भी आटा बेचने के लिए जाता, और उसके साथ साथ उधर से कुछ पैसे मिलते थे उनसे मैं जो बचत होती थी उनमें से कुछ मैं हीटर की प्लेटें लेके आया, और मैंने लो कॉस्ट में छोटे हीटर बनाने शुरू किए, और गांव में बिजली मेरे आ गई थी और हमने गांव में वो हीटर बांटे। वो 7 रुपये का मुझे सामान पड़ता था, 12 रुपये में मैं इसको बेच रहा था। तो ऐसे करके मैंने 65 हीटर के आसपास गाँव में बेच दिए, उससे मेरे को आमदन भी आई। फिर मैंने एक और मशीन बनाई हमने, अलार्म अर्थक्विक मशीन बनाया, जैसे भूकंप आएगा और भूकंप आने से हम सो रहे हैं तो कमरे से कैसे भागें। तो इस तरह के हमने घड़ी के ऊपर एक पेंडुलम लगा करके वो बनाया। तो इस तरह पानी निकालने का हैंडपम्प भी बनाया जो हवा से पानी उठाएगा। तो इस तरह के भी तो ये वो स्कूल की एक्टिविटी के मुताबिक कर रहे थे, ऐसे करते मैट्रिक कर ली मैंने। मैट्रिक में मैं 2 बार फेल हुआ। जब मैं कॉलेज में जाना शुरू किया, पिताजी ने आटा चक्की बंद कर दी थी और घर की हालात ऐसे हो गए कि अब खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। मेरी माताजी बीमार हो गई और मेरी बहन बीमार हो गई। जो मेरी बहन बीमार हुई तो वो डॉक्टरों पे माताजी उनको दिखाती थी ज़्यादा। और एक दिन क्या किया, डॉक्टर ने बोला कि भाई ये तो अब लाइलाज बीमारी इसको लगी हुई है, अब ये बेटी बच नहीं पाएगी। तो माता को हील होने लग गया कि भी तू कैसे अपनी बेटी को मरते हुए देखेगी। तो और इधर फिर माँ भी बीमार होगी और मेरे मन कॉलेज में कैंटीन में मैंने ये सारा चाय के समय में दिमाग में आई सारी स्टोरी और मैं इस काम को नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं पुलिस छोड़ करके इलाज कराता हूँ। पहले सिस्टर का इलाज शुरू किया मैंने और मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ इसके इलाज हो गया। लगभग 6 महीने इलाज में मेरे लग गए वहाँ पर। हार्ट का ऑपरेशन हुआ, ठीक भी हुई। गाँव आया तो जब भी श्रीमती जी प्रेगनेंट है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, वहाँ गए हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में जा करके भी 24 दिसंबर को बेटी ने जन्म लिया। क्रिश्चियन का एक त्यौहार था हैं, तो वहाँ से जब घर आए तो उनके भी खर्चे बनते, पैसे तो बनेंगे ना हॉस्पिटलों में, मेरा इनकम सोर्स जीरो हो रहा है। तो अब मेरे जब घर में आया मैं तो अगले दिन पिताजी कुछ बोलने लगे तो मुझे महसूस हुई बात कि भाई अब मेरे पिताजी मेरा खर्चा मैं कमा नहीं रहा हूँ, मेरी बेटी का खर्चा और मेरी वाइफ का खर्चा पिताजी उठा रहे हैं, क्या मैं अपना खर्चा नहीं उठा सकता। ऐसे करके मैं घर से मैट्रिक का सर्टिफिकेट लिया और 2 रुपये मेरी जेब में पड़े थे, ये ले करके मैं अपने रोड पे आया और रोड पे आकर के प्लान बनाया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और एक बड़ा शहर है दिल्ली और वहाँ पर मैं कोई भी रोज़गार कर लूँगा, वहाँ मैट्रिक सर्टिफिकेट मेरे पास है, शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी वहाँ। तो ऐसे करके मैं वहाँ घर से निकला और आगे आया तो मेरे हाथ में जो घड़ी थी वो मैंने 2 रुपये में, मैं लाडवा आ गया और लाडो से मैं घड़ी किसी को 70 रुपये में बोला कि दुकानदार से कि भैया आप मेरी घड़ी रख रही है और मुझे सिर्फ 70 रुपये दे दो, जबकि एक घड़ी 450-450 रुपये की थी। और मैंने बोला कि जब मैं वापस आऊँगा दिल्ली से और फिर मैं आपसे ये घड़ी खरीद लूँगा, भले मैं इसके 300 रुपये भी आपको देने को तैयार रहूँगा, आप इधर उधर मत बेचना। ऐसे वो घड़ी मैंने उससे दे करके मैं आ गया दिल्ली। रात को ठंड, वहाँ 27 दिसंबर की रात थी और मेरे पास कोई कपड़े भी नहीं थे और मैं ऐसी रात मैंने गुजारी, कहीं बैठ गया, कागज़ फूक करके बैठ गया लोगों के बीच पास और लगभग मैंने 12-13 रुपये की चाय भी पी ली। और अब मेरे पास वापस घर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। यही था कि मैं घबराता नहीं, जो भी होगा मैं देखूँगा, मैं करूँगा कुछ। एक आदमी से मिला, दो से मिला, भी मजदूरी कहाँ मिली, गाँव का रहने वाला हूँ भाई, मैं बोरी उठा लूँगा, 100 किलो वजन की मेरी प्रैक्टिस है, मैं अकेला उठा लेता हूँ 100 किलो वजन अपनी पीठ पे लाद लेता हूँ। और मुझे कसी चलानी आती है, गांव का रहने वाला हूँ, काफ़ी गहरी गहरी कसी मार करके खड्डे खोद दूँगा, कोई बिल्डिंग में भी जा सकता हूँ काम में, अगर मुझे कोई बिल्डिंग का काम मिल जाए ऐसे लोगों के साथ मजदूरी। और सोच ही रहा हूँ कि भाई मुझे कोई काम मिले बस ऐसा, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनके बीच में एक नया आदमी आ गया जो रूटीन के लोग हैं। तो वो बोले आप कैटरिंग जानते हो, आपको जानते नहीं, आप गांव के रहने वाले हो हैं, यहाँ को काम मिलने वाला नहीं है। तो बड़ा अजीब हो गया था। एक रिक्शा वहाँ से क्रॉस हो रही थी, उस पर लिखा हुआ था कम्बोज रिक्शा गैरेज और मैं कम्बोज हूँ। तो अब मैं वहाँ उससे रिक्शा वाले बोला भाई मुझे एक बात बता, ये आपका कम्बोज गैरेज कहाँ है? वो बोला कि यहाँ से 200 फीट की दूरी भी है, अब बैठो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो मैं उसकी रिक्शा में बैठ गया और उसने वहाँ छोड़ दिया मैं। तो सेठ से मैं बात करी कि भाई मेरा नाम धर्मवीर है, मैं कम्बोज बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, आप मुझे कोई यदि काम दे देंगे रिक्शा का, मेरे पास तो लगभग जो है ना कोई 7-8 रुपये रह गए हैं, मैं खाना भी नहीं खा सकता दोपहर का, आप मुझे अपनी रिक्शा किराए पर दे दो। और ये मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मैं गाँव से चला तो आया है लेकिन मुझे पता नहीं था आगे मेरे साथ में अब क्या होगा, और अगर आप रिक्शा दे देंगे मैं कुछ कमाई शुरू करूं। तो उन्होंने मुझे 6 रुपये मतलब दिन पे और 5 रुपये रात पे, 11 रुपये पर डे पे अपनी एक रिक्शा मुझे दे दी किराए पे। और मैं उसको वहाँ से सर्टिफिकेट और टिफिन वहाँ रख के उसके पास में चला गया। तो एक रिक्शा वाले बात की मैं कैसे चलाऊँ इस रिक्शा को, वो रिक्शा वाला बोला तू अनजान है तो सीधे इधर से फतेहपुरी से लाल किला, फतेहपुरी लाल किला ऐसे घूमता रहो। मैं ऐसे ही घूमने शुरू किया और मेरे पैसे शुरू हुए। रात को मैंने लगभग कोई 60 रुपये मैंने इकट्ठे कर लिए रात तक। और मैं फुटपाथ, अब सोने का प्लान आया तो मैं कहाँ सोऊं, कोई मेरा मकान तो था नहीं, रात आ गई ऊपर से, अब दूसरी खाना खा करके फिर मैं पता किया कि ये जो अरजाइयों वाले हैं, ये इतने अरजाइयाँ इन्होंने रख रखी हैं, गद्दे रखे हुए हैं, ये बिछा के देते हैं, 3 रुपया लेते हैं। तो मैं चलो ठीक है। तो इधर मैं एक शेड था, 3 शेड के नीचे वहाँ मैं बिछाए और मैं सो गया। ये साथ में सड़क थी पास में, अपने आप को बचा करके कि ऐसी जगह ना सोऊं जिससे ट्रैफिक की चपेट में आ जाऊं। नहाया सुबह 4 बजे ऐसे, फिर खड़े हो गया, फिर रिक्शा लेके खड़े हो गए रेलवे स्टेशन पे। अब ऐसे करके कुछ सवारियों ने रास्ते बताए, भाई मैं जानता तो नहीं, ऐसे में शुरू कर दिया। और दिल्ली में रिक्शा चलाते चलाते मुझे वहाँ सामने एक रेलवे स्टेशन के साइड में एक लाइब्रेरी देखने को मिली अगले दिन। तो मैं लाइब्रेरी देखी, अंदर गया मैं उसमें बाहर रिक्शा खड़ी करके, तो उस वहाँ पर अलग अलग प्रकार की किताबें, और कोई वो टैक्स नहीं लेते थे, और वहाँ पर लोग आते किताब पढ़ते और उनको पढ़ के रख जाते, जैसे मैंने कॉलेज में मेरी लाइब्रेरी का देखा था, जिससे कि बड़ा लाइब्रेरी था दिल्ली का, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। तो यहाँ आना 2 घंटे, यहाँ देखना कि भाई यूरोप में कौन सी सब्जियाँ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी सब्जियाँ होती हैं, अंग्रेजी में सारा पढ़ना उनको, और एस्पैरागस, पार्सले, सेलरी, इस तरह की देखी, मशरूम के बारे में जानकारियाँ ली, और यहीं पर ही खारी बावली मैंने फूलों की मंडी में फूलों के बारे में जानकारियाँ ली, और यहीं पर मैंने देखा कि यहाँ बड़े बड़े जो फूलों के इत्र होते हैं, जो परफ्यूम होती है, वो भी यहाँ बिक रही है। और ये बातें सोचते कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो खेती किसानी की ही हैं यहाँ पर जो बिक रही है, लेकिन इनको बनाने का और इनके पैकेजिंग करने का इनका सिस्टम ये लोग हो रहा है। वहाँ पर मैंने देखा अमरूद का जैम देखा मैंने, मेड इन पेरू, मैंने स्ट्रॉबेरी जैम देखा मेड इन होलैंड, ऐसी बड़ी बड़ी खान मार्केटें और जहाँ पर ये इस तरह के मुझे देखने को यहाँ मिले, काफ़ी सोचने का मौका मिला। और ऐसे में वहाँ से एक दिन मेरे ख्याल में कोई लगभग कोई जुलाई की 12-13 तारीख के आसपास की बात, में पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास तांगा स्टैंड के पास से बर्फ़ की सिलियाँ उठाई और पीलीकोटी साइड में गया मैं। मैं जा ही रहा था, इधर से मैंने टर्न किया, उधर से एक फ्रेट कार ऐसे आई, सीधा धड़ाम मार दिया एकदम। मुझे आती थी कि मुझे टक्कर लगती थी कि उसके बाद में मैं गिरा, यहाँ तक मुझे पता मैं गिरा, लेकिन उसके बाद में मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। अब ये नहीं पता मैं कितने टाइम वहाँ पड़ा हूँ और क्या लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ पता ही नहीं। तो एकदम अचानक ही मुझे कुछ होश आया और मैं पड़ा था और मैं देखा मेरा पसीना आया मुझे, मैं बैठा हुआ और बैठा हुआ अचानक ही देखा वो बर्फ़ पड़ी, पानी बन रही है टुकड़ों में, और वो रिक्शा के पहिए भी टूट लिए, और मैं तो बच गया, मेरा एक्सीडेंट होया और मैं बच गया और मेरे आंसू आ गए। तो मेरे जो चोट थी उसके मुझे इतना नहीं हो रहा जितना मुझे अब कहाँ मेरी बेटी छोटी और कहाँ यहाँ मैं मर जाता, मुझे क्या पता मेरी लाश मुझे घर वालों को मिलती ना मिलती, क्या होता कुछ नहीं, ऐसा बस दिमाग घूम गया मैं छोड़ो ये दिल्ली। और रिक्शा चलाने में तो बेइज्जती होती थी, कोई रेडी वाला भी रिक्शा वाले को बोलता चल आगे चल आगे, किसी दुकान के आगे थोड़ा रुक गए वो भी बोलता है चल, ये क्या जिंदगी में आ गए, नरक बना लिया मैंने। मैं घर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से वो सर्टिफिकेट लिया अपना और मैं अपने बस में बैठा और सामान जो था लेके घर आ गया गाँव में। 99 में मैंने हर्बल खेती पर काम शुरू किया और 2001-02 में हर्बल के बारे में मैं काफ़ी अपने इलाके में फेमस हो गया। 2004-05 में मैंने बड़े बड़े हर्बल गार्डनों के ऑर्डर लेने शुरू किए, FRI देहरादून जैसी बड़ी संस्थाएं, इनको मैंने पौधे सप्लाई शुरू कर दिए। जड़ी बूटियों में जो फेमस हुआ तो हमारे किसानों का टूर अजमेर पुष्कर चला गया राजस्थान में, बागवानी विभाग के अधिकारी लेकर के गए। और यहाँ 2005 में जब जड़ी बूटियों की हमने वहाँ कल्टिवेशन देखी, वो लोग एलोवेरा कर रहे हैं, वो लोग अश्वगंधा कर रहे हैं, वो लोग जीरे का तेल निकाल रहे हैं, वो लोग गुलाब से गुलाब जल बना रहे हैं, वहाँ पर बहनें आंवले के लड्डू बना रही हैं। और ये जब मैंने नज़दीक से देखा तो बहनों के हाथ छिल जाते थे पतरे पे, आंवला रगड़ रगड़ करके हाथ छिल जाते थे, जैसे पतरे पे रगड़ते हैं ना ऐसे हाथ छिल जाते, तो ये गुठली चाहिए उसके फर छिल जाता। तो फिर मैंने सोचा यही काम मैं भी करूँगा, और मैंने भी गांव में आया, मैं DHO साहब से बात करके भी ये काम मैं शुरू करूँगा, गुलाब जल भी बनाऊँगा और मैं आंवले की मिठाइयाँ भी बनाऊँगा, तो मैं प्रोसेसिंग में आता हूँ। तो मैं जब ये आंवले मैं बाज़ार से ले गया, पत्र ले गया, रगड़ने शुरू किए तो हाथ छिलने शुरू हो गए। अब हाथ छिलने शुरू हो गए तो 5 किलो आंवला एक बहन जो है सुबह से शाम तक वो 5 किलो आंवले को रगड़ती है, और 4 बहनों ने 20 किलो आंवला रगड़ा सुबह से शाम तक, उनके हाथ भी छिल गए। क्यों ना इसकी कैसी मैं मशीन बना दूँ जिनके हाथ ना छिलें और ये आंवला भी कद्दूकस हो जाए। चलो जी मैं लग गया स्लेट बत्ती लेकर के, बेटी की स्लेट बत्ती लेकर के बैठ गया, काम शुरू किया। स्केच बन गया है कि भाई हम इस तरह की मशीन होगी, यहाँ से इसमें हम लोग एलोवेरा डालेंगे, यहाँ से जूस आ जाएगा, यहाँ से इसको गर्म कर देंगे ये गर्म हो जाएगी, और यहाँ से इसको ठंडा कर देंगे ठंडी हो जाएगी, और इसमें ये कटर लगा देंगे तो ये हो जाएगा। तो ऐसे करके तो स्केच बना के मैं श्रीमती जी के साथ बाजार में गया, एक जगह गया, फिर दो जगह गया, तीसरी जगह बाइक पे गया, तो मैं कहा भाई मेरे लिए ये मशीन आप बना दो। तो बोला मैं बना दूँगा, भाई कितने पैसे लेगा बोलो, इसमें ये मोटर लगेगी, ये वो लग जाएगा, सिस्टम लगेगा, जो भी लगेगा आप दो, आप बताइए। पैसे की बात आ गई तो बोले जी 35,000 रुपये में हम आपकी मशीन बना देंगे। मैं ठीक है जी। मैं बोला यार मुझे मैंने 20,000 उनको दे दिए, और उसके बाद में फिर एक हफ्ते बाद गया, मगर जी कुछ बना मशीन का, क्या अभी तो नहीं बना है। कैसे करते करते 7 महीने निकल गए जी, मशीन ना बने, पैसे भी गए, और मैं वो अब क्या करें यार, अब आपसे कहीं जा भी नहीं सकते, आप बातें पूछ लेते हो। फिर नहीं बात, मैं गया एमएलए को, मेरे एमएलए थे बरादरी, मैंने भाई वहाँ पर एक मशीन बनवाने के लिए बोला है, अभी मेरे ख्याल में कोई 9 महीने के आसपास हो गए हैं, आप थोड़ा मेरी हेल्प कर दो। तो वो एमएलए ने अपने आदमी भेजे वहाँ, फिर अपने आप गया और देखा भाई कभी अगर ऐसी मशीन बन गई तो हम इससे इतना फ़ायदा कर देंगे, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब वो करते कर 11 महीने में ये मशीन मेरी रेडी हुई, और जब मैं लेके आया मैंने वो वहाँ पर भी ट्रायल लिया, पिताजी बोले वहीं ट्रायल ले ले बाईस का, तो मैंने वहाँ भी ट्रायल ले लिया, मैं लेके आया तो यहाँ मैंने घर पे काम शुरू किया। तो सीधे खेत पे जहाँ मेरे टमाटर हैं सीधे वहाँ जाओ, सीधे टमाटर खेत पे टमाटर केचप बना लिया, और एलोवेरा जूस का काम शुरू कर दिया। एलोवेरा 1 घंटे में 200 लीटर हम एलोवेरा जूस बनाने लगे मशीन से। और ये जो जूस है अब इसको किसको बेचें, तो हरिद्वार में संपर्क किया, यहाँ पर बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ लगी हुई हैं, तो इन फार्मेसियों में सप्लाई शुरू कर दी। तो हर रोज़ की एक गाड़ी हम जो है ना एलोवेरा जूस की हरिद्वार ही लगे बेचने, भाई हरिद्वार वाले बेचेंगे हम सप्लाई देते रहेंगे। तो ऐसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एक संस्था, उन्होंने मशीन के बारे में पता लग गया, अहमदाबाद से हनी बी नेटवर्क संस्था है, ज्ञान है सृष्टि है, तो इन्हें पता कि हरियाणा में इस तरह किसी ने कोई मशीन बनाई है, चलो पता करते हैं। अखबारों में आ गई बात कि भाई जो 1200 रुपये 1400 रुपये लीटर एलोवेरा जूस आ रहा है अमेरिका से, तो वो यहाँ पर जो है एक सिंपल एक ग्रामीण फार्मर ने बना दी जो 1 घंटे में 200 किलो निकालती है, और इसमें जूस जेल शैम्पू साबुन इसमें जो चाहते हैं वो उसमें मशीन में बन जाता है। तो ये बात फैली, तो NIF ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे यहाँ पर नेशनल स्टेट अवार्ड और 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने दी। वो बात जो है अखबारों में फैली वहाँ से, और मुझे सोचा भी नहीं था कि प्रेसिडेंट के सामने मुझे जाने का मौका मिलेगा, वहाँ अपने प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। और BBC न्यूज़ और दूसरे बड़े चैनलों ने मेरे बारे में जिक्र करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े अखबारों में द हिंदू और बड़े अखबार, ऐसे मेरी को मेलें आनी शुरू की। मैंने एक मेल वो बनवा लिया अपना, ईमेल एड्रेस बनवा लिया, और मेरे को मेलें आनी शुरू हो गई, बाहर ले मुल्कों से भी मेलें आनी शुरू हो गई। तो प्रेसिडेंट हाउस में मुझे 20 दिन गेस्ट रहने का मौका 14 जुलाई को मिला, 1 जुलाई से 20 जुलाई 2014 में मैं प्रेसिडेंट गेस्ट रहा, और यहाँ पर भी मैंने अपनी टेक्नोलॉजी को पूरे देश और दुनिया वालों को बताया, और मेरी टेक्नोलॉजी अफ्रीका में ट्रांसफ़र की गई, और यहाँ पर मुझे मतलब कई कई 1000 लोगों को हमने वहाँ ट्रेनिंग दी। USAID अमेरिका की एक संस्था भी मेरे साथ में थी, NIF सृष्टि ज्ञान ये संस्थाएँ थी, और यहाँ से हमने जो टेक्नोलॉजी हमने फ्री में ट्रांसफ़र की, तो इससे पूरे अफ्रीकी देशों में मशीन के बारे में चर्चा हुई। और जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे थे एक मशीन खरीद के लेके गया यहीं से दिल्ली ऑडिटोरियम से, है जी। और मुझे खुशी है कि भाई अब हम 15 मुल्कों में हमने अपनी मशीनें बेच शुरू कर दी, हम जल्दी ही 100 कंट्री में अपनी मशीनें भेजने जा रहे हैं, हमने स्टाफ बढ़ाया, अपने वर्कशॉप बढ़ा ली है। पैडमैन फिल्म में उन्होंने लिया मुझे, और मेरे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, उन्होंने मुझे अपने बोर्ड का मेंबर बना दिया, मेरे गांव के उस पर सम्मान पट पे मेरा नाम लिखा गया स्वर्ण अक्षरों में। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, देखो भाई हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमारे पास बहुत मौका है देखने का, हम देखें तीसरी आँख से देखें हम क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे 1-2 का 4 कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एनालिसिस खुद करनी चाहिए, क्या हम उससे बेहतर बना सकते हैं, क्या हम उससे बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे देख लीजिए, मैं मेरे हालात क्या थे और आज मेरी इनोवेशन की वजह से देश और दुनिया में मेरा तो नाम हुआ ही, और आगे उन लोगों को भी लाभ मिल रहा है जो इस इनोवेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप हमें नए विचार सोचने चाहिए, नए नए आइडिया लेने चाहिए, और क्या पता एक दिन आप ही का आइडिया दुनिया को बदलेगा। वो बात रियल मेरे ऊपर ठीक हो रही है। धन्यवाद।
क्योंकि आप जो स्टॉक्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी को सीरियसली लेते हैं, आप वो सारे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं जिससे आप जिंदगी में तरक्की कर सकें, लोगों से आगे बढ़ पाए। और अगर ये सच है तो जोश स्टॉक्स का ही एक ऐप है जोश स्किल्स, जहां एग्जैक्टली इसी चीज को करने के लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे कोर्सेज बनाए गए हैं, कोर्सेज जो लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कोर्सेज स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशनल नहीं है, जहां आप एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स और ये सब सीख सकते हैं, बल्कि लाइफ स्किल्स भी है, जहां आप पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, आप हेजिटेशन के बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। तो अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो, जोश टॉक्स जो करता है वो पसंद है, तो आपको जोश स्किल्स भी बहुत बहुत ही फायदेमंद लगेगा। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को